ओम शांति। 15 दिसंबर 2001। समय आत्माएं आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं, तो समय की पुकार आत्माओं की पुकार हे देवात्माएं सुनने नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृतिपति को देख देख पुकार रही है, हे प्रकृतिपति आत्माएं अब परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। अब मुक्ति दिलाने वाले आत्माएं मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो, बस हो गया सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को मर्सीफुल स्वरूप देखने चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो क्या हो जाएगा? किससे दूर हो जाएंगे? व्यर्थ से। और अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो राहुल भाई किससे छूट जाएंगे? और मांगने से, बाबा कहते हद की आकर्षण से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। तो 15 दिसंबर 2001 की यह मुरली है। क्या कहा बाबा ने? समय आत्माएं आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रही है। कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी कौन कौन हमें पुकार रहा है। 10 गिनाए थे, यहां पर बाबा 3 को याद कर रहे हैं। समय आत्माएं और प्रकृति। हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती है? प्रकृति भी आप प्रकृतिपति को देख देख पुकार रही है, हे प्रकृतिपति आत्माएं अब क्या करो? परिवर्तन करो। तो यह बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बीच बीच में क्या हो रहा है? छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। कल एक बहुत सुंदर टॉपिक पर बोलने के लिए कहा था, दावा का जो ज्ञान है वो शॉक एब्जॉर्बर कैसे है। नीचे स्पार्क की मीटिंग में बाबा का ये जो ज्ञान है ये शॉक एब्जॉर्बर है, जैसे कार में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वैसे ये ज्ञान शॉक एब्जॉर्बर कैसा है। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। हम खिला रहे कि वो खुद ही खा रहे? आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं मास्टर मुक्तिदाता बन इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन लिया चुप हो जाते हो, बस हो गया सुन लिया? इसलिए बाप दादा हर बच्चे को मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो। क्या बनो? मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो क्या हो जाएगा? हद की आकर्षण से, हद की बातों से स्वतः दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं क्या? पुकार सुनो। किन की पुकार सुनो? आत्माओं की, प्रकृति की, समय की, अपने संपूर्ण स्वरूप की, एडवांस पार्टी की आत्माओं की, बाप दादा की, मधुबन तपस्या भूमि की और अंतकरण की और किसकी पुकार सुनो? काल की, काल समय, ऐसी 10 बातें हैं। इस पर एक कमेंट्री बनाई जा सकती है। कौन बनाएगा? कृष्णा माता कि मैं आत्मा बीच में हूं, और दसों दिशाएं हैं, दसों दिशाओं का गायन है, दसों दिशाओं में ये एक एक चीज खड़ी है और मुझे पुकार रही है और मुझसे क्या बात कर रही है। जैसे प्रकृति मुझे क्या कह रही है, समय मुझे क्या कह रहा है, काल मुझे क्या कह रहा है, अंतकरण की आवाज मुझे क्या कह रही है, एडवांस पार्टी की आत्माएं क्या कह रही है, मधुबन क्या कह रहा है, हमारे महान कर्तव्य क्या कह रहे हैं, ऐसी 10 बातें हैं टोटल। ये 10 आत्माएं, बाप दादा, इन सब की पुकार क्या है मेरे लिए। हाँ कह दिया, महान कर्तव्य हो गए। तो ऐसी ये 10 दिशाओं से आ रही 10 पुकार मुझ आत्मा को पुकार रही है, या ये सारी बातें मुझे पुकार रही है और क्या कह रही है, उनका क्या वार्तालाप है और फिर मुझे क्या करना है ये पुकार सुनकर, ऐसी एक कमेंट्री बनाई जा सकती है। तो बाबा कह रहे हैं पुकार सुनो, आत्माएं कह रही है, हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। देव आत्माएं, कल भी कहा था बाबा ने, तुम देव आत्माएं हो, पुण्य आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, श्रेष्ठ लकीर वाली आत्माएं हो, अपने महान संकल्प से स्वयं को और दूसरों को शीतल करने वाली आत्माएं हो, आशीर्वाद के बोल बोलने वाली आत्माएं हो। तो हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। प्रकृति भी देख देख कर पुकार रही है, क्या कह रही है प्रकृति, हे प्रकृतिपति आत्माएं अब क्या करो, परिवर्तन करो। आप मुक्ति दिलाने वाले कौन हो, मुक्ति दाता हो, हे मुक्ता मुक्त करो, तारणहार हम है, क्या करो उनके प्रति, रहम मर्सी कंपैशन। रहम दिल बनो आत्माओं के प्रति, मर्सीफुल बनो, मर्सी कह रहे हैं ना बाबा, मर्सीफुल। ये जो झटके हैं ये सुनकर रहम नहीं आता, समाचार सुनकर के चुप हो जाते हो, बस हो गया सुन लिया, परंतु बाप दादा क्या देखना चाहते हैं, मर्सीफुल स्वरूप। हद की बातें छोड़ो और क्या करो, मर्सीफुल, मर्सी अर्थात रहम रहमत, मर्सी अर्थात कृपा अनुकंपा करुणा दया सहानुभूति सिंपैथी समानुभूति एम्पैथी, अलग 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 शब्द जुड़े हैं। सिस्टर ऑफ फ्रेंडलीनेस, मैत्री की बहन करुणा को कहा जाता है। कंपैशन मित्रता की, तो वह करुणा, वह रहम, वह रहमत, वह कृपा, वह अनुकंपा हृदय में प्रकट करना है। मर्सीफुल बनो, अपने मर्सीफुल स्वरूप को दिखाओ, आत्माओं के ऊपर रहम करो। तरस नहीं पड़ता, दुख दर्द में इतनी डूबी हुई है, एक पल का चैन नहीं, नींद नहीं आती है, रात रात भर जागते रहते हैं, छत को देखते हुए, टहलते हुए, करवटें बदलते हुए, ऐसी संसार की आत्माओं की स्थिति है। तो मर्सीफुल स्वरूप दिखाओ, सकाश दो, सहारा दो, शांति दो, क्या करो, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। सकाश शब्द जो है वो पहली बार कब आया और कहां आया, क्या किसी साकार मुरली में सकाश शब्द है, किस समय आया, ब्रह्मा बाबा के समय में आया या बाद में आया? 1968 मार्च, बॉम्बे में कौन था? विश्व किशोर भाऊ एडमिट थे, तबीयत खराब थी, पुणे में थे फिर बाद में थोड़ा समय, तब से बाबा ने सकाश शब्द का प्रयोग किया था। वो मुरलियों में तो नहीं आया तब, वो तो अव्यक्त में आया, परंतु आया भी होगा शायद पत्रों में बाबा के, सकाश दो सकाश दो, बाबा योग कर रहे रात रात जाकर 1968 में। बनाया हुआ है मिक्सचर, कॉकटेल है, कौन सी भाषा का है पता नहीं, हिंदी भी नहीं है, गुजराती भी नहीं है, उर्दू भी नहीं है, इंग्लिश तो है ही नहीं। वो जो सूर्य है उसके प्रकाश, उसको प्रकाश कहते हैं, उसकी किरणों को, ज्ञान सागर की किरणें जो है उसको सकाश कहते हैं, इस सूर्य की किरणों को प्रकाश, उस सूर्य की किरण को सकाश। तो सकाश दो, सहारा दो, शांति दो, रहम करो, मर्सीफुल स्वरूप प्रकट करो, पुकार सुनो आत्माओं की। तो आज चर्चा करते हैं मर्सीफुल स्वरूप पर। इसमें दो भाग है, एक है सेल्फ कंपैशन और दूसरा है कंपैशन फॉर अदर्स। रहम सबसे पहला किसके ऊपर? स्वयं पर, हम ही रहम के पात्र हैं, क्या करें उसके लिए, कैसे करें स्वयं पर। और कुछ दूसरी बातें, कैसे रहम करें स्वयं पर, पहला रहम दो स्वयं पर फिर दूसरों पर, क्या क्या किया जाए। गफलत से स्वयं को बचाना, परचिंतन परदर्शन परमत से बचाना, और स्वयं के लक्ष्य को स्मृति में रखना। उसमें बहुत अच्छी बात एक कही जाती है, वो है सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, स्वयं से बात करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना, अपने आप को याद दिलाना, स्मरण दिलाना, मैं कौन, मैं क्या। दूसरा है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है, अवेयरनेस क्या होता है, जागृत अवस्था में जीना, जैसे जो भी हम सोच रहे कर रहे स्वयं को नैरेट करना, अभी मैं यहां बैठा हूं, अभी मैं ये सुन रहा हूं, अभी मैं ये बोल रहा हूं, अभी मैं यहां से चल रहा हूं, जैसे किसी और को सुना रहे हैं, वैसे स्वयं स्वयं को सुनाना, सेल्फ नरेशन। सेल्फ टॉक एक अलग है, जिसमें हम अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस अर्थात जागरण की वह अवस्था, इतनी जागृत अवस्था है कि जैसे हजारों लोग मुझे देख रहे हैं और ये जो कुछ मैं सुना रहा हूं सबके सामने सुना रहा हूं, जैसे यहां ही अभी अभी मैं आत्मा बैठी हूं और सुन रही हूं, ये माइंडफुलनेस है। माइंड भटकेगा नहीं यहां, नहीं तो यहां बैठे बैठे भटकता है। बाबा ने कल कहा था ना, आर्ट कला, तुम्हारा सुनना भी कला है, क्योंकि क्योंकि आत्मा समझ के सुनते हो, तुम्हारा देखना भी कला है क्योंकि आत्मा समझ के देखते हो, हर चीज जो तुम करते हो कला है, आर्ट है। तो माइंडफुलनेस। तीसरा ग्रेटिट्यूड, तीसरा ग्रेटिट्यूड अर्थात धन्यवाद का भाव। दिन भर में जो कुछ हुआ शाम को उसके प्रति धन्यवाद, जो भी हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और वो हुआ इसलिए क्योंकि ये ज्ञान का को प्रैक्टिकल में लाने का अवसर मिला उससे। नहीं तो केवल नारे लगाते रहेंगे तो क्या होगा, मैं अचल अढ़ोल आत्मा हूं, मैं अचल अढ़ोल आत्मा हूं, उसकी परख भी तो होनी चाहिए। जब हलचल आएगी तभी तो पता चलेगा मैं अचल अढ़ोल हूं, एक रस आत्मा हूं, मान अपमान निंदा स्तुति में समान हूं। जब निंदा होगी तब तो पता चलेगा, उपहास होगा, धोखा मिलेगा, आरोप लगेंगे, अविश्वास किया जाएगा, असहयोग मिलेगा, दुख मिलेगा, तब तो कह सकेंगे कि सुख दुख जय पराजय हानि लाभ सब में समान। तो ये जो भी दिन भर में हुआ अवसर मिला इससे, एक अपॉर्चुनिटी, ऐसी अवसरवादिता का भाव, मौका परस्त। तो धन्यवाद। चौथा, सेल्फ फॉरगिविंग, खुद को माफ करना, नहीं तो वो पश्चाताप। हर एक व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं अशेम्ड है, शर्मसार है कहीं ना कहीं, ये नहीं करना चाहिए था कर दिया, ये होना नहीं चाहिए था हो गया, और उसी पश्चाताप के वो भाव से पीड़ित है, ग्रसित है, एक बहुत बड़ा पत्थर छाती पर रखा है। किसको बताए, कैसे दूर करे इस पत्थर को, कैसे मुक्त हो इससे। तो सेल्फ पार्डन, स्वयं स्वयं को माफ कर देना, ये कार्य करना है। माइंडफुलनेस पहला, दूसरा ग्रेटिट्यूड, तीसरा पॉजिटिव सेल्फ टॉक, चौथा सेल्फ फॉरगिवनेस, खुद को माफ कर देना। फिर बहुत सारी और चीजें बताती है, जैसे एक्सरसाइज, ड्रिल से स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, फिजिकल ऑल्सो, स्पिरिचुअल ऑल्सो, मेंटल ऑल्सो, हर प्रकार की ड्रिल से। जब आत्मा कमजोर होती है तो ये सारे भाव बहुत ज्यादा होते हैं। इसके लिए संगम युग का एक मुख्य लक्ष्य है कि आत्मा को शक्तिशाली बनाना, पावरफुल बनाना। उसके लिए ड्रिल की आवश्यकता है। आत्मा की जो मसल्स है, बाइसेप्स ऑफ द सोल, उसको शक्तिशाली बनाना है। जिम में जाना पड़ेगा, थोड़ा स्पिरिचुअल जिम में स्पिरिचुअल ड्रिल्स करनी पड़ेगी, तब ये सोल की जो मसल्स है, नहीं तो फ्लैबी हो जाती है, सुस्त ढीली हो जाती है, बैठे बैठे कोई एक्सरसाइज ही नहीं। एक्सरसाइज चाहिए आत्मा को, बार बार 5 स्वरूपों का अभ्यास, 3 स्वरूपों का अभ्यास, तब कहीं जाके ये आत्मा। और एक्सरसाइज किसी को भी करने को बोलो, पहले रिएक्शन होती है, बाद में ठंड बहुत है, जिम नहीं है, कहां जाए, बहुत सारी बातें करती है। एक्सरसाइज करने बोलो किसी को, वॉकिंग जॉगिंग, मुश्किल से आत्मा ये सारी चीजें करती है, मोटिवेट नहीं हो पाती है सब चीजों के लिए। फिर कुछ सालों में जब बीमारी आ जाती है और डॉक्टर्स कहते हैं करो करो, तब कहीं जाके प्रकाश जागृत होता है कि करना चाहिए, तब तक बीमारी आ चुकी है। तो जैसे वो एक्सरसाइज शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल ड्रिल टू स्ट्रेंथन द बाइसेप्स ऑफ द सोल, आत्मा की जो मसल्स है उनको शक्तिशाली बनाने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। तो यह है स्वयं पर रहम करना। अभी है दूसरा, दूसरों पर रहम कैसे करें। जब स्वयं को हमने जैसे शक्तिशाली बनाया, अब दूसरों को शक्तिशाली बनाना है, पालना करनी है आत्मा की ज्ञान और योग से, सारे विश्व की आत्माओं की, एक दो आत्माओं की नहीं, सकल जगत की पालना, विश्व भरण पालन कर जोई, ताके नाम राम अस होई, ऐसा राम हमें बनना है जो सकल विश्व की पालना करे। उसके लिए संसार के प्रति रहम, सबसे पहले तो जैसे स्वयं को माफ किया वैसे उन सबको भी माफ करना, जैसे स्वयं के लिए ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड अपनाया वैसे संसार की सभी आत्माओं के लिए ग्रेटिट्यूड का भाव। रहम दिल बनने में एक और चीज बताई जाती है, रोल एक्सचेंजिंग। रोल एक्सचेंजिंग मतलब दूसरे के जूते पहनना, या दूसरे के जूते में पैर रखना। कोई दुखी है तो वो अनुभव करना, कोई परिस्थिति में है तो अगर हम उसमें होते तो क्या करते, हमारे साथ भी ऐसी चीज हो गई होती तो क्या करते, हमारी स्थिति कैसी होती, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर है, अगर हमारा होता तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, हम बीमार पड़ जाए तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, एक बीमार व्यक्ति की मनोस्थिति मनोदशा कैसी होती है, एक वह व्यक्ति जिस पर आपदा आ पड़ी है उसकी स्थिति कैसी होती है, एक वह व्यक्ति जिसके परिजनों ने देह त्याग कर दिया है उसकी स्थिति कैसी होती है। दूसरों को टू स्टेप इनटू समबडी एल्सेस फुट शूज जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, अनुभव करना कि उसके अंदर कौन सी भावनाएं हैं, और वो जो रोल एक्सचेंजिंग है ये हमारे अंदर रहम को जागृत करेगा। नहीं तो हम चलते जाते हैं रास्ते से, हमें वास्तव में बहुत रहम दिल है अंदर से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इतने भिखारी इतने बीमार, दूसरों के लिए ड्रामा, किसी की मां ने शरीर छोड़ा तो हलवा खाओ और खुद की, बाबा ने कहा था ना सभी दादियों को, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो तुम कहती हो क्या, कहती हो दूसरों की, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, और अभी खुद की गई तो जिसको दर्द होता है बस वही दर्द को जानता है, He alone who is hurt knows the pain, शेक्सपियर ने कहीं कहा है। तो सहानुभूति नहीं केवल, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी, समानुभूति, रोल एक्सचेंजिंग, मर्सी, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, ये केवल शब्द नहीं है परंतु उसमें उतरना है, समझना है क्या है संसार की सभी आत्माओं को, यह भावना की सब तीव्र पुरुषार्थी बन जाए, समय को पहचान ले, जैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वैसे ये सब भी करने लगे, ये अवेयरनेस आ जाए, ये माइंडफुलनेस आ जाए उनमें भी, तो संसार की सभी आत्माओं के प्रति कौन सा भाव, रहम का भाव। अच्छा, ओम शांति।